अब हम समाजीकरण के उद्देश्यों के बारे में चर्चा करेंगे, यानी एम्स ऑफ सोशलाइजेशन। समाजीकरण से व्यक्ति या समाज को क्या लाभ है, इस विषय पर ब्रूम एवं सेल्सनिक ने इस प्रकार प्रकाश डाला है। पहला, समाजीकरण अनुशासन का पाठ पढ़ाता है। समाजीकरण की प्रक्रिया के द्वारा व्यक्ति का आचरण समाज में अनुशासित होता है। समाजीकरण के अभिकरण व्यक्तियों को यही सिखाते हैं कि उन्हें कौन सा आचरण करना चाहिए और कौन सा नहीं करना चाहिए। समाजीकरण के द्वारा जीवन में अनुशासन की महत्ता का ज्ञान होता है। धीरे धीरे अनुशासन व्यक्तियों के व्यक्तित्व का अभिन्न अंग बन जाता है और वे आदतन सामाजिक नियमों के अनुरूप व्यवहार करने लगते हैं। दूसरा उद्देश्य, समाजीकरण प्रेरणा का स्रोत होता है। समाजीकरण के द्वारा व्यक्तियों में सिर्फ अनुशासन ही नहीं आता है, बल्कि समाजीकरण व्यक्तियों को अनुशासित ढंग से कुछ करने के लिए प्रेरित भी करता है। किसी व्यक्ति को जीवन में क्या बनना चाहिए, क्या हासिल करना चाहिए या क्या नहीं बनना चाहिए, इसका ज्ञान समाजीकरण के द्वारा ही होता है। कोई व्यक्ति कवि बनना चाहता है तो कोई बहुत बड़ा सर्जन, कोई बहुत बड़ा खिलाड़ी बनना चाहता है और तो कोई बहुत बड़ा वैज्ञानिक। इस प्रकार की बहुत सारी चीज़ें हैं जिसे व्यक्ति अपने जीवन में प्राप्त करना चाहता है। इसकी प्रेरणा उसे समाज से मिलती है। समाज में रहकर व्यक्ति या तो स्वयं जीवन के लक्ष्यों के बारे में सीखता है या उसे दूसरे लोग कुछ प्राप्त करने के लिए उसे प्रेरित करते हैं। समाजीकरण सामाजिक भूमिका का पाठ पढ़ाता है। तीसरा, किसी व्यक्ति को किस परिस्थिति में कैसा आचरण करना चाहिए, इसका ज्ञान उसे समाजीकरण के द्वारा ही प्राप्त होता है। प्रत्येक समाज यही चाहता है कि उसके सदस्य समाज के स्वीकृत मूल्यों एवं मानदंडों को ध्यान में रखकर ही आचरण करें, क्योंकि समाज का कल्याण उसी में है। अतः बचपन से लेकर मृत्यु पर्यंत लोगों के सामाजिक व्यवहार में अनुरूपता पर बल दिया जाता है। यह कार्य समाजीकरण के द्वारा समाज संपन्न कर पाता है। चौथी विशेषता, समाजीकरण कुशलता प्रदान करता है। समाज में विभिन्न प्रकार के कामकाज होते हैं जिसे करने के लिए काफ़ी कुशलता की जरूरत होती है। आजकल श्रम विभाजन में इतना अधिक विशेषीकरण हो गया है कि प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येक काम को नहीं कर सकता है। व्यक्तियों की योग्यता को ध्यान में रखकर समाज लोगों को शिक्षा के माध्यम से विभिन्न पेशों एवं कार्य कुशल बनाने का काम करता है। समाज के लिए शिक्षा की एक प्रमुख उपयोगिता समाजीकरण को सहज और सरल बनाना है। पांचवी विशेषता, समाजीकरण के द्वारा व्यवहारों में अनुरूपता आती है। समाजीकरण का एक प्रमुख उद्देश्य यह भी है कि समान परिस्थिति में तमाम लोग समान व्यवहार करें। कोई भी समाज अपने सदस्यों को मनमाने ढंग से व्यवहार करने की इजाज़त नहीं देता है। जनजातियों के बीच विवाह प्रथा आधुनिक समाज के लोगों की तुलना में अलग प्रकार की है। उसी तरह मुस्लिम विवाह प्रथा हिंदू विवाह प्रथा से भिन्न है। ईसाई लोगों की विवाह प्रथा सिखों की विवाह से भिन्न है। इस भिन्नता के पीछे मुख्य कारण यह है कि प्रत्येक समाज के अंतर्गत लोग अपने अपने सामाजिक मान्यताओं के अनुरूप आचरण करते हैं। समाजीकरण के कारण ही एक संस्कृति दूसरी संस्कृति से भिन्न नजर आती है। अब हम समाजीकरण की विधियों के बारे में चर्चा करेंगे, यानी मोड्स ऑफ सोशलाइजेशन। जैसा कि ऊपर स्पष्ट किया जा चुका है, समाजीकरण सामाजिक भूमिकाओं की सीखने की प्रक्रिया का नाम है। लेकिन यह प्रक्रिया कोई सीधे ढंग से नहीं चलती। कभी तो लोग कुछ सीखने के लिए आसानी से तैयार हो जाते हैं, तो कभी कुछ लोग सीखने से बहुत दूर भागते हैं, और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो इसका विरोध करते हैं। विभिन्न समाजों में प्रचलित समाजीकरण के तरीकों को देखने से ऐसा लगता है कि समाज अपने सदस्यों को सिखाने के लिए दो तरीकों को अपनाता है, जिसे ब्रूम एवं सेल्सनिक ने दमनकारी समाजीकरण यानी रिप्रेसिव सोशलाइजेशन एवं सहभागी समाजीकरण यानी पार्टिसिपेटरी सोशलाइजेशन कहा है। जब कोई व्यक्ति समाज में गलत आचरण करता है तो समाज उसे दंडित करता है। जैसे बच्चे जब घर में गलत हरकत करते हैं तो माता पिता उनको फटकारते या मारते पीटते हैं। कभी कभी माता पिता सिखाने के लिए बच्चों को कुछ पुरस्कार भी दिया करते हैं ताकि लोभवश बच्चे अच्छा आचरण कर सकें। जब समाजीकरण का माध्यम दंड या भौतिक पुरस्कार होता है तो उसे दमनकारी समाजीकरण कहा जाता है। दमनकारी समाजीकरण वह सामाजिक प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत आज्ञाकारिता, अनुशासन एवं प्रभुत्व के प्रति सम्मान का भाव सिखाया जाता है। आदेशों का संचार माता पिता से बच्चों की ओर होता है। बच्चों का व्यवहार आदेश एवं भय से संचालित होता है। यह समाजीकरण माता पिता केंद्रित माना जाता है, यानी पेरेंट सेंटर्ड। सहभागी समाजीकरण वह है जिसमें बच्चों को अपनी इच्छा के अनुसार आचरण करने की काफी छूट दी जाती है। माता पिता अपने बच्चे को डांट फटकार कर या आदेश के माध्यम से नहीं सिखाते, उसे गलत आचरण करने के लिए दंडित भी नहीं किया जाता है, बल्कि आमतौर पर स्वेच्छा से ही व्यवहार करते हैं। उनके ऊपर बाह्य नियंत्रण कम से कम होता है। कोशिश यह होती है कि बच्चा अपने व्यक्तिगत अनुभवों से सीखे। इसलिए सहभागी समाजीकरण को संतान केंद्रित यानी चाइल्ड सेंटर्ड समाजीकरण माना जाता है। दमनकारी समाजीकरण एवं सहभागी समाजीकरण का अंतर इस उदाहरण से आसानी से स्पष्ट होता है। बच्चे यदि आग छूना चाहते हैं तो उन्हें छूने दिया जाता है। माँ बाप यह सोचकर छूने देते हैं कि यदि एक बार हाथ गलती से जल जाता है तो बालक भविष्य में आग छूने की हिम्मत नहीं करेगा। इसके विपरीत एक दूसरी स्थिति यह होती है कि जब बच्चा आग छूने की कोशिश करता है तो माता पिता उसे डांटने फटकारने लगते हैं। पहली प्रक्रिया को सहभागी समाजीकरण यानी पार्टिसिपेटरी सोशलाइजेशन और दूसरी प्रक्रिया को दमनकारी समाजीकरण यानी रिप्रेसिव सोशलाइजेशन कहा जाता है। समाजीकरण की दोनों विधियों के बीच अंतर स्पष्ट करने के लिए यहाँ हम ब्रूम एवं सेल्सनिक द्वारा दी गई सारणी को उद्धृत करना चाहेंगे, जो इस प्रकार है। एक तरफ रिप्रेसिव सोशलाइजेशन और दूसरी तरफ पार्टिसिपेटरी सोशलाइजेशन। रिप्रेसिव सोशलाइजेशन में पनिशिंग रॉन्ग बिहेवियर, जबकि पार्टिसिपेटरी सोशलाइजेशन में रिवॉर्डिंग गुड बिहेवियर। रिप्रेसिव सोशलाइजेशन में मेटेरियल रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट्स, जबकि पार्टिसिपेटरी सोशलाइजेशन में सिंबॉलिक रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट। रिप्रेसिव सोशलाइजेशन में ओबीडियंस ऑफ चाइल्ड, जबकि पार्टिसिपेटरी सोशलाइजेशन में ऑटोनॉमी ऑफ चाइल्ड। रिप्रेसिव सोशलाइजेशन में नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, जबकि पार्टिसिपेटरी सोशलाइजेशन में वर्बल कम्युनिकेशन। रिप्रेसिव सोशलाइजेशन में कम्युनिकेशन एज कमांड, जबकि पार्टिसिपेटरी सोशलाइजेशन में कम्युनिकेशन एज इंट्रैक्शन। रिप्रेसिव सोशलाइजेशन में पेरेंट सेंटर्ड सोशलाइजेशन, जबकि पार्टिसिपेटरी सोशलाइजेशन में चाइल्ड सेंटर्ड सोशलाइजेशन। रिप्रेसिव सोशलाइजेशन में चाइल्ड डिस्क्रिमिनेट्स ऑफ पेरेंट्स विशेस, जबकि पार्टिसिपेटरी सोशलाइजेशन में पेरेंट्स डिस्क्रिमिनेट ऑफ चाइल्ड्स नीड्स। रिप्रेसिव सोशलाइजेशन में फैमिली एज सिग्निफिकेंट अदर, जबकि पार्टिसिपेटरी सोशलाइजेशन में फैमिली एज जनरलाइज्ड अदर। अब हम समाजीकरण के स्तर के बारे में चर्चा करेंगे, यानी स्टेजेस ऑफ सोशलाइजेशन। यह पहले ही कहा जा चुका है कि समाजीकरण सीखने की एक ऐसी प्रक्रिया है जो आजीवन चलती रहती है। चूंकि यह प्रक्रिया काफ़ी लंबी होती है, विभिन्न मनोवैज्ञानिकों एवं समाजशास्त्रियों ने समाजीकरण को कई चरणों में विभक्त कर देखने का प्रयास किया है। टी पार्सन्स ने इस पर काफ़ी विस्तार से चर्चा की है। उन्हीं तथ्यों को ध्यान में रखकर जॉनसन ने चार स्तरों की चर्चा की है। पहला मौखिक स्तर यानी ओरल स्टेज, दूसरा गुद स्तर यानी एनल स्टेज, तीसरा मातृरति स्तर यानी ओडिपल स्टेज, और चौथा किशोरावस्था यानी एडोलेसेंस। प्रथम तीन स्तरों में समाजीकरण का मुख्य अभिकरण यानी एजेंट परिवार होता है। बच्चे अपने जीवन की अधिकांश चीज़ों के बारे में अपने माता पिता से ही सीखते हैं। चौथे स्तर में द्वितीयक सामाजिक समूहों की महत्ता बढ़ जाती है। व्यक्ति परिवार से बाहर के लोगों से कुछ ज़्यादा ही सीखता है। अब हम यहाँ इन चारों स्तरों के बारे में अलग अलग विस्तार से चर्चा करेंगे। पहला मौखिक स्तर यानी ओरल स्टेज। जब कोई शिशु जन्म लेता है तो वह उसी क्षण से बहुत प्रकार की परेशानियों एवं असुविधाओं का सामना करने लगता है। वह अपनी संवेदनाओं को रो चिल्लाकर मुंह के माध्यम से अभिव्यक्त करता है। भाषा के अभाव में रोने, चेहरे के हाव भाव एवं हाथ पर चलाने के अलावा अपनी संवेदनाओं को प्रकट करने का उसके पास कोई दूसरा माध्यम ही नहीं होता है। इस अवस्था में शिशु परिवार में मात्र अपनी माँ से ही संबंध स्थापित कर पाता है। बच्चा अपनी आप को माँ से अलग नहीं कर पाता है। माँ की गोद में उसे कुछ ऐसी अनुभूति होती है जो उसे काफ़ी अच्छा लगता है। सिगमंड फ्रायड ने इस स्थिति को प्राथमिक परिचय यानी प्राइमरी आइडेंटिफिकेशन कहा है। यह अवस्था जन्म से लेकर कोई एक या डेढ़ वर्ष तक की होती है। चूंकि बच्चा अपने आप को माँ से अलग करने में समर्थ नहीं हो पाता है, इसलिए इस स्तर के संबंध में जॉनसन ने लिखा है कि मदर एंड इन्फेंट आर मैरिज्ड। परिवार के अन्य सदस्य भी जो बच्चे के संसर्ग में आते हैं उसे बालक अपनी माँ के रूप में ही देखता है। यह दूसरी बात है कि गोद में जाने पर बच्चा अपनी माँ एवं अन्य औरतों के बीच के अंतर को थोड़ा समझ लेता है। शिशु का माँ से इतना गहरा लगाव हो जाता है कि किसी दूसरे के पास उसे वह सुख नहीं मिल पाता है जो वह अपनी माँ की गोद में अनुभव करता है। दूसरा स्तर गुद स्तर एनल स्टेज। द्वितीय स्तर का काल थोड़ा इस अर्थ में लंबा होता है कि यह लगभग 1 से 3 साल तक चलता है। पर इस अवधि की लंबाई समाज पर भी निर्भर करती है। इस अवस्था में माँ अपने बच्चों को स्तन्य त्याग एवं शौच प्रशिक्षण देने का प्रयास करती है ताकि वह थोड़ा आत्मनिर्भर हो सके। इस अवस्था में बालक को बातचीत करने तथा चलने फिरने को भी सिखाया जाता है। थोड़ा बहुत शरीर सफाई का भी ज्ञान किया जाता है। बच्चा परिवार के अन्य सदस्यों के संपर्क में आता है। बच्चा क्रोध, स्नेह, विरोध एवं प्रेम के भाव से परिचित होता है। इस स्तर में प्राथमिक परिचय की स्थिति समाप्त हो जाती है। वह माँ एवं अपनी भूमिका को स्वतंत्र रूप से देखने में काफ़ी समर्थ हो जाता है। बच्चा यह समझने लगता है कि माँ का संबंध सिर्फ उसी से नहीं बल्कि परिवार के अन्य सदस्यों से भी है। बच्चे सिर्फ प्यार पाते ही नहीं बल्कि प्यार देने की भी कोशिश करते हैं। तीसरा स्तर मातृरति स्तर यानी ओडिपल स्टेज। इस चरण का विस्तार सामान्यतः चौथे वर्ष से प्रारंभ होकर 12 या 13 वर्ष की आयु तक चलता है। मनोवैज्ञानिकों ने इस चरण को ओडिपल संकट का काल कहा है। इस संबंध में यह जान लेना उपयुक्त होता है कि ओडिपल ग्रीक साहित्य का एक ऐसा किरदार था जो अनजाने में अपनी माँ से विवाह किया था और इलेक्ट्रा एक ऐसी बालिका थी जिसने अनजाने में अपने पिता के साथ सहवास किया था। इन्हीं दो किरदारों को लेकर मनोवैज्ञानिकों ने यह स्पष्ट करने का प्रयास किया है कि मानव जीवन का यह एक ऐसा काल है जब पुत्र अपनी माँ की ओर आकर्षित होता है और उसे अपने पिता के प्रति उसके मन में द्वेष होता है। ठीक इसके विपरीत पुत्री को अपने पिता से प्रेम होता है और माता के लिए उसके मन में वैर भाव उत्पन्न होता है। पहली वाली स्थिति को मातृरति यानी ओडिपस कॉम्प्लेक्स और दूसरी वाली स्थिति को पितृरति या इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। इस स्तर में यौन भावना इतनी विकसित हो जाती है कि वह अपनी माँ पर अपने प्यार का एकाधिकार स्थापित करना चाहता है। वह चाहता है कि उसके पिता उसकी माँ को प्यार न करें। लड़कियाँ भी अपने पिता पर एकाधिकार चाहती हैं और उसे माँ से काफ़ी ईर्ष्या होती है, पर इस अवस्था में यौन भेद का बहुत स्पष्ट ज्ञान नहीं होता लेकिन उसके प्रति सहज आकर्षण होता है। अतः वह अपने दोस्तों के संसर्ग में आकर थोड़ा बहुत यौन के बारे में जानने का प्रयास करता है। वह बहुत कुछ इस बात पर भी निर्भर करता है कि किस समाज में यौन के बारे में कितना खुलापन है। विकसित देशों के बच्चे इस संबंध में अपेक्षाकृत कुछ ज़्यादा ही जानकारी रखते हैं। चौथी अवस्था किशोरावस्था यानी एडोलेसेंस। किशोरावस्था मानव जीवन का एक संक्रांति काल है। इसे एक बार फिर से सुनिए। किशोरावस्था मानव जीवन का एक संक्रांति काल है। इस स्तर में बच्चे अपने माता पिता के नियंत्रण से मुक्त होना चाहते हैं। इस काल में विभिन्न किस्म की बुरी आदतें लगने का भी भय रहता है। इस अवस्था में लड़के लड़कियों में शारीरिक परिवर्तन स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ने लगता है। यौन संबंधी ज्ञान इतना हो जाता है कि उसके कारण उनके जीवन में विभिन्न प्रकार के तनाव देखने को मिलते हैं। वे अपने जीवजन्य अभिप्रेरण के अनुरूप यानी बायोजेनिक मोटिवेशन के अनुरूप व्यवहार करने एवं मनोभावों को पूर्ण करने की पूरी कोशिश करते हैं। उन्हें अपने परिवार में कम और दोस्तों के बीच कुछ ज़्यादा ही दिल लगता है। इस अवस्था में बच्चों के आत्मन यानी सेल्फ का पूरा विकास हो जाता है। निम्न वर्ग के बच्चों को पारिवारिक समस्याओं का इतना अधिक सामना करना पड़ता है कि वे परिवार के लिए थोड़ा बहुत कमाने की भी कोशिश करते हैं, लेकिन इस स्तर में मध्यम एवं उच्च वर्ग के बच्चे स्कूली शिक्षा समाप्त करने की स्थिति में होते हैं। इस अवस्था में कुछ बच्चों को मौज मस्ती या नशीली वस्तुओं के सेवन का भी शौक हो जाता है। इस अवस्था में बच्चा अपने समाज और संस्कृति के बारे में इतना कुछ सीख लेता है कि वह लगभग स्वतंत्र होने की स्थिति में रहता है। यहाँ यह नहीं समझना चाहिए कि इन चार इन चार चरणों के बाद जीवन में समाजीकरण की प्रक्रिया रुक जाती है या समाप्त हो जाती है। जैसा कि पहले भी कहा जा चुका है कि समाजीकरण की प्रक्रिया जीवन भर चलती रहती है। यहाँ महत्वपूर्ण बात यह है कि समाजीकरण की प्रक्रिया की तीव्रता यानी इंटेंसिटी जीवन के अन्य अवस्थाओं की तुलना में इन चार अवस्थाओं में काफ़ी अधिक तेज होती है। प्रौढ़ एवं वृद्ध अवस्था में व्यक्तियों में शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक दृष्टिकोण से काफ़ी परिवर्तन आ जाता है। उसे माता पिता की हैसियत से कुछ कदम आगे निकलकर दादा दादी, सास ससुर, नाना नानी आदि कई रूपों में विभिन्न प्रकार की भूमिकाएं निभानी पड़ती हैं। जहाँ कहीं भी व्यक्ति अपने जीवन यापन के लिए काम करता है, वहाँ भी उन्हें सहकर्मी एवं सहयोगी की हैसियत से विभिन्न भूमिकाएं निभानी पड़ती हैं। इन भूमिकाओं को निभाने के लिए लोगों को कुछ न कुछ सीखना पड़ता है। कभी कभी अपने कार्यों के संपादन से भी अनुभव प्राप्त किया जाता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि व्यक्ति का समाजीकरण आजीवन चलता रहता है और इस तरह कुछ न कुछ वह हमेशा सीखता रहता है। फर्क सिर्फ सीखने की मात्रा का है। बियर स्टेट ने सही लिखा है कि पर्सनालिटी डू नॉट कम रेडी एक बार फिर से सुनिए। बियर स्टेट ने सही लिखा है कि पर्सनालिटी डू नॉट कम रेडीमेड। किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास में समाजीकरण की सबसे प्रमुख भूमिका होती है। लोगों को यह नहीं सोचना चाहिए कि व्यक्तित्व का विकास कोई जैविक प्रक्रिया है। व्यक्ति जन्म से ही अपने गुणों को प्राप्त नहीं करता है, बल्कि समाज के सदस्य के रूप में वह धीरे धीरे अर्जित करता है। जीवन चक्र की इस प्रक्रिया में समाजीकरण के विभिन्न अभिकरणों की भूमिका होती है। यहाँ उन कुछ प्रमुख अभिकरणों को संक्षिप्त रूप में व्यक्त किया जा रहा है। समाजीकरण के अभिकरण, एजेंसीज ऑफ सोशलाइजेशन। जे एच फिक्टर ने इस संबंध में एक जगह लिखा है कि द टोटल सोसाइटी इज द एजेंसी फॉर सोशलाइजेशन एंड दैट ईच पर्सन विथ हुम वन कम्स इनटू कॉन्टैक्ट इज इन सम फैशन एन एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन। अर्थात जितने भी लोग किसी व्यक्ति के जीवन में आते हैं, उन सभी से वह कुछ न कुछ अवश्य सीखता है। इसलिए कहा जाता है कि समाजीकरण के बहुत सारे अभिकरण होते हैं। इसके बावजूद कुछ ऐसे अभिकरण अवश्य हैं जो विश्वव्यापी स्तर पर समाजीकरण की भूमिका में अहम भूमिका अदा करते हैं, समाजीकरण की प्रक्रिया में अहम भूमिका निभाते हैं। कुछ लोगों के जीवन में ऐसे भी अवसर आते हैं जहां जीवन का बहुत बड़ा हिस्सा व्यतीत होता है और वहीं उनका मुख्य रूप से समाजीकरण होता है, जैसे सेना, जेल, आश्रम, पागलखाना, स्कूल, महाविद्यालय, छात्रावास इत्यादि। इसे गॉफमैन ने समग्र संस्थान यानी टोटल इंस्टीट्यूशन कहा है। पर ध्यान देने की बात यह है कि इन अभिकरणों के द्वारा समाजीकरण से ज़्यादा पुनर्समाजीकरण यानी रीसोशलाइजेशन होता है। यहाँ प्रमुख अभिकरणों की संक्षिप्त चर्चा की जा रही है। पहला, परिवार, फैमिली। समाज का निर्माण और उसकी निरंतरता परिवार के द्वारा ही संभव है। समाज के नए सदस्य सबसे पहले किसी न किसी परिवार में ही आते हैं। इसलिए व्यक्ति सर्वप्रथम अपने समाज एवं संस्कृति के बारे में परिवार में ही सीखता है। बोलने, खड़ा होकर चलने, ढंग से रहने, वस्त्र पहनने, विभिन्न प्रकार के लोगों के साथ व्यवहार करने आदि के संबंध में सबसे पहले वह परिवार में ही सीखता है। इसलिए तो कहा जाता है कि परिवार मानव जीवन की प्रथम पाठशाला है। परिवार में व्यक्ति सबसे अधिक अपनी माँ से ही सीखता है। व्यक्तित्व के विकास में माँ की इतनी भूमिका होती है कि जिसका छाप जीवन भर व्यक्तित्व में दिखाई पड़ता है। यदि अपनी माँ के माध्यम से जीवन का सही ज्ञान नहीं मिल पाता है, तो व्यक्तित्व का विकास दोषपूर्ण हो जाता है। इसी तथ्य पर जोर देते हुए फ्रांस के एक सेना अध्यक्ष एवं कुशल राजनीतिज्ञ नेपोलियन बोनापार्ट ने कहा था, यदि मेरी माँ पढ़ी लिखी होती, तो मैं स्वर्ग को धरती पर उतार देता। आधुनिक समाजशास्त्रियों ने समाजीकरण में परिवार की भूमिका का कोई कम बल नहीं दिया है। यह बिल्कुल स्पष्ट और सर्वविदित है कि परिवार समाज और व्यक्ति के बीच एक अहम कड़ी का काम करता है। दूसरा, मित्रों का समूह, पीयर ग्रुप। बालक जब खेलने लायक हो जाता है, तो वह दोस्तों की तलाश करता है। धीरे धीरे मित्र मंडली का निर्माण हो जाता है। पड़ोसी एवं स्कूल के बच्चों के साथ जब वह खेलने लगता है, तब वहाँ भी वह सीखता है। परिवार में तो माता पिता उसे जानबूझकर कुछ न कुछ सिखाने का प्रयास करते हैं, लेकिन मित्र मंडली में वह प्रेम, फटकार, झगड़ा एवं प्रतियोगिता जैसी प्रक्रियाओं से अप्रत्यक्ष रूप से रोज कुछ न कुछ सीखता है। कुछ कुछ वैसी भी चीजें सीखता है जिनके बारे में माता पिता बच्चों को कभी नहीं बतलाते हैं। अपने मित्र मंडली में अंतःक्रिया के माध्यम से बहुत प्रकार की दुनियावी चीजों के बारे में सीखता है। बहुत सारे जनजातीय समूहों में युवा गृह यानी डोरमेट्री की व्यवस्था होती है, जहाँ लोग अपने मित्र मंडली में बहुत तरह के जीवनोपयोगी अनौपचारिक प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं। जिन समाजों में शिक्षा की थोड़ी कमी है या जो समाज आर्थिक रूप से अधिक विकसित नहीं है, उन समाजों में समाजीकरण के क्षेत्र में मित्र मंडली की बहुत अहम भूमिका होती है। तीसरा, पड़ोस यानी नेबरहुड। C.H. कुली ने परिवार एवं मित्र मंडली के अलावा पड़ोस को भी एक प्राथमिक समूह माना है, जो समाजीकरण की प्रक्रिया में बहुत ही प्रभावशाली अभिकरण के रूप में काम करता है। बड़े नगरों में विभिन्न मोहल्लों के अंतर्गत कई छोटे समूह होते हैं जो पड़ोसी कहे जाते हैं, पर ग्रामीण इलाकों में यदि गांव का आकार छोटा है, तो समस्त ग्रामीण समुदाय ही पड़ोस का रूप ले लेता है। हर मोहल्ले या कस्बे की अपनी एक उप संस्कृति होती है, जिसे परिवार से बाहर निकलने पर बालक सर्वप्रथम महसूस करता है। आसपास में जो धार्मिक या सांस्कृतिक क्रियाकलाप होते रहते हैं, उसका वहाँ के लोगों पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। व्यक्ति जिस ढंग के परिवेश में रहता है, उसका प्रभाव उसके व्यक्तित्व में अवश्य दिखाई पड़ता है। यदि किसी मोहल्ले में चोर, उचक्के या बदमाशों की एक बड़ी संख्या है, तो उस मोहल्ले के बच्चों को एक आदर्श व्यक्ति बनने में काफी कठिनाई होती है। बुरे पड़ोसियों के संसर्ग में रहकर बुराई सीखने की संभावना ज्यादा रहती है, लेकिन यदि पड़ोस के लोग काफी अच्छे हैं, तो उस पड़ोस में रहने वाले लोगों पर उसका प्रभाव आमतौर पर अच्छा ही पड़ता है। शहरी पड़ोसी की भूमिका जीवन में एक ग्रामीण समुदाय की भूमिका होती है। लोग सिर्फ अपने परिवार से ही, माफ करिए, इसे फिर से सुनिए, लोग सिर्फ अपने परिवार से ही नहीं, बल्कि अपने समुदाय से भी बहुत कुछ सीखते हैं। शायद इन्हीं तथ्यों को ध्यान में रखकर शहरों में बहुत से लोग एक अच्छे मोहल्ले में ही रहना पसंद करते हैं। चौथा, शिक्षा, एजुकेशन। आधुनिक समाज में शिक्षा का एक विशिष्ट महत्व है। विद्यालयों एवं महाविद्यालयों के माध्यम से बच्चों को अपने समाज एवं संस्कृति के बारे में काफ़ी जानकारी मिलती है। समाजीकरण में स्कूली शिक्षा की इतनी अहम भूमिका होती है कि प्रत्येक माता पिता अपने बच्चे को अच्छे से अच्छे स्कूल में दाखिला देना चाहता है। आधुनिक युग में औपचारिक शिक्षा की इतनी अधिक महत्ता है कि लोगों को विभिन्न प्रकार का ज्ञान स्कूलों तथा महाविद्यालयों के माध्यम से मिलता है। शायद उनका ज्ञान समाजीकरण के अन्य अभिकरणों से प्राप्त नहीं होता है। शिक्षण संस्थानों में ज्ञान के तीन प्रमुख स्रोत हैं। पहला, शिक्षक शिक्षिकाएं, दूसरा, सहपाठी एवं तीसरा, पुस्तक। इन्हीं तीन चीज़ों के मिलने से स्कूली शिक्षा का वातावरण निर्मित होता है, जिसका प्रभाव व्यक्तित्व के विकास में इतना अधिक होता है कि किसी भी व्यक्ति को देखकर यह समझा जा सकता है कि उसकी इस शिक्षा किस प्रकार के शिक्षण संस्थानों में हुई है। जिस समाज में शिक्षा का प्रसार उतना नहीं होता है, वहाँ शिक्षा का माध्यम मौखिक अंतःक्रिया है। लोग अनौपचारिक रूप से समाज के वयोवृद्ध लोगों से ज्ञान प्राप्त करते हैं। बहुत सारी जनजातियों एवं आदिम समाजों के बीच अधि आधुनिक शिक्षा का प्रसार नहीं हुआ है। वहाँ समाज के बड़े बुजुर्ग ही तालीम के स्रोत माने जाते हैं। जो लोग जितनी अधिक उम्र के होते हैं, उन्हें उतना ही अधिक अनुभवी और ज्ञानी माना जाता है। वे लोग मौखिक रूप से बालकों एवं नवयुवकों को अपने ज्ञान एवं अनुभवों से अवगत कराते हैं। इसलिए वैसे समाज में उम्र विभेदीकरण यानी एज डिफ्रेंसिएशन प्रतिष्ठा का आधार माना जाता है। लोग यही मानते हैं कि ज्ञान का संबंध उम्र से है। जो जितना ज़्यादा उम्र वाला है, वह उतना ही अधिक काबिल या अकलमंद माना जाता है। पांचवा, राज्य, स्टेट। प्रत्येक राज्य यही चाहता है कि उसके नागरिक या निवासी उस राज्य के नियमों, दस्तूरों एवं सामाजिक मान्यताओं के अनुरूप आचरण करें। राज्य समाचार पत्रों, चलचित्रों, विज्ञापनों, शिक्षा संस्थानों एवं जन संचारों के माध्यम से राज्य में रहने वाले विभिन्न लोगों का समाजीकरण करने का प्रयास करता है। राज्य भी अपने समाज के लोक संस्कृति एवं कलाओं को संरक्षित एवं प्रसारित करने की कोशिश करता है। इन प्रयासों का एकमात्र उद्देश्य लोगों को अपने समाज एवं संस्कृति विरासत के बारे में अवगत कराना है। जो लोग राज्य के नियम कानूनों का उल्लंघन करते हैं, समाज उन्हें अनुसरण करने के लिए मजबूर करता है। जो लोग राजकीय नियम कानूनों का पालन करते हुए अपने राज्य या राष्ट्र के हितों को आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं, राष्ट्र उन लोगों को उच्च पद या विशिष्ट सम्मान देकर पुरस्कृत करने का प्रयास करता है, और यही पुरस्कार राज्य के अन्य लोगों को के जीवन में अच्छे आचरण के लिए प्रेरणा का स्रोत बन जाता है। कभी महान पुरुषों के नाम पर स्कूलों, महाविद्यालयों, सड़कों या नगरों का नामकरण किया जाता है, तो कभी उनकी प्रतिमाओं को मुख्य जगहों पर स्थापित किया जाता है, तो कभी पाठ्य पुस्तकों में उनका जीवन चरित्र देकर समाज में उनका सम्मान बढ़ाया जाता है। ठीक इसके विपरीत, जो लोग राज्य विरोधी गतिविधियों में हिस्सा लेते हैं, उन्हें न्यायालय के माध्यम से सजा दी जाती है। राज्य वैसे लोगों की भर्त्सना करता है। आज बापू के हत्यारे नाथुराम गोडसे जैसे लोगों को राज्य हे दृष्टि से देखता है। इन सारे माध्यमों से राज्य अपने नागरिकों को एक अच्छा नागरिक बनाने का प्रयास करता है। एक अच्छा नागरिक बनाए जाने की प्रक्रिया समाजीकरण है। छठा, जनसंपर्क के साधन, मास मीडिया। गिडेंस ने जनसंपर्क को भी समाजीकरण का एक प्रमुख अभिकरण माना है। उन्होंने बताया है कि 18वीं सदी के अंत होते होते समाचार पत्रों एवं पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से पाश्चात्य देशों का जनजीवन काफ़ी तेजी से प्रभावित होने लगा। समाचार के तमाम माध्यमों से लोगों की मनोवृत्तियों तथा विचारों का निर्माण होने लगा। जब छपाई माध्यम यानी प्रिंट मीडिया काफ़ी प्रचलित हो गया तो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम का प्रभाव दिखाई पड़ने लगा। लोगों का विचार रेडियो और दूरदर्शन के माध्यम से प्रभावित होने लगा। गिडेंस ने कुछ अध्ययनों के उपरांत यह कहा है कि समाचार पत्रों की तुलना में दूरदर्शन ज़्यादा सशक्त माध्यम है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि आधुनिक युग में इन दो माध्यमों ने लोगों के विचार को काफ़ी प्रभावित किया है। इन माध्यमों के द्वारा परंपरागत सांस्कृतिक मूल्यों एवं मान्यताओं का काफ़ी प्रचार एवं प्रसार हुआ है। इन माध्यमों के सहारे विशेषकर पढ़े लिखे लोगों के बीच उनकी संस्कृति एवं समाज के बारे में विभिन्न प्रकार के भूले बिसरे विचारों का उजागर हुआ है, जिनके आधार पर लोग अपने सामाजिक तथा राष्ट्रीय जीवन में निर्णय लिया करते हैं। उपर्युक्त समाजीकरण के अभिकरणों की चर्चा से यह नहीं समझा जाना चाहिए कि समाजीकरण में बाह्य सामाजिक वातावरण ही सब कुछ है। व्यक्तित्व के विकास में वातावरण का निस्संदेह महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है, लेकिन आनुवंशिकता इसका योगदान भी नकारा नहीं जा सकता है। व्यक्तित्व के संदर्भ में समाजशास्त्र एवं मनोविज्ञान में प्रकृति व परिपोषण विवाद यानी नेचर व नर्चर इफेक्ट यही कहता है कि सामाजिक आत्मन के विकास में दोनों प्रकार के कारकों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है।